आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता, आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता। चांद के पास तारा जैसे कोई झिल मिलाता।
ओम शांति। हम सभी बाबा के सौभाग्यशाली बच्चे, जिनको सत्य राह मिली है, जिस सत्य राह पर, सच्चे पथ पर हम सभी चल रहे हैं, वो सच्चा पथ दिखाने वाली बाबा की मुरली है, जिस मुरली से ब्राह्मण जीवन को सांस मिलती है, चलने का मार्गदर्शन मिलता है। मुरली ही ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रीमत है। कई बार श्रीमत क्या है और किससे ली जाए, बहुत से भाई बहनों के प्रश्न रहते हैं, लेकिन जब हम सभी रोज बाबा की मुरली का अध्ययन करते हैं, विशेष बाबा की साकार मुरलियों में, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक के लिए हर बात की बहुत सुंदर मत, एक सुंदर राय हम सब ने मुरलियों से ही पाई है। हम सभी भाग्यशाली बच्चे बाबा के तीन स्वरूपों से डायरेक्ट पालना ले रहे हैं। बाप रूप से हम सबको इतनी शक्तिशाली पालना मिली है, मात पिता ने हम सबको इतना समर्थ बनाया है, टीचर के रूप में सृष्टि के आदि मध्य अंत का, तीनों लोकों तीनों कालों का बहुत सुंदर स्पष्ट ज्ञान दिया है, और सतगुरु बनकर हम सबकी गति सदगति का सहज मार्ग बहुत सुंदर श्रीमत के रूप में, राय के रूप में दिया है। तो एक बाबा और एक बाबा के तीन स्वरूप, बाप टीचर और सतगुरु, तीनों रूप से हम बच्चे रोज बाबा की पालना ले रहे हैं। बाबा की मुरलियों में आप सब ने नोट किया होगा, शुरू शुरू में जब हम मधुबन में आए, बचपन था, और विशेष करके हमारी दीदी जिनको हम सभी प्यार से मनमोहनी दीदी कहते, बाबा के साथ 1965 से मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी ने बहुत सुंदर बाबा के साथ पार्ट प्ले किया था, और जब बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी और दादी की जोड़ी वंडरफुल जोड़ी थी। दादी जी को बसंत कहते थे और दीदी को रूप कहते थे। रूप और बसंत की ये जोड़ी थी। रूप इसलिए कि दीदी का योग बहुत पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था। दीदी अगर किसी को दृष्टि देती थी तो उसी समय उसको सतयुग का, ट्रांस का अनुभव होने लगता था, और दादी जी की वाणी में बहुत बड़ी शक्ति थी। तो दादी जी मुरली पढ़ करके सुनाती थी, और दीदी जी की मुख्य विशेषता थी उस मुरली को बहुत सुंदर ढंग से नोट नोट्स लेती थी और मुझे दीदी जी के साथ पार्ट बजाने का आते ही चांस मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि दीदी हिंदी नहीं लिखती थी, दीदी की राइटिंग सदैव सिंधी में, भाषा हिंदी होती थी लेकिन राइटिंग सिंधी थी। तो मुझे आते ही कहा कि अगर तुम सिंधी सीखो तो तुमको टाइप सिखाएंगे, तो मैंने सबसे पहले सिंधी सीखी और सिंधी सीखकर दीदी जी के नोट्स को पढ़ना और टाइप करना एक चांस मिला। उसमें दीदी हमेशा कहती थी एक मुरली में चारों सब्जेक्ट की पॉइंट्स होती हैं, तो डायरी में चार कॉलम बनाओ, एक कॉलम में ज्ञान की पॉइंट्स नोट करो, एक कॉलम में योग की पॉइंट्स नोट करो, एक में धारणा की, एक में सेवा की। हम सबकी पढ़ाई के ये मुख्य चार सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट में बाबा हम सबको नंबर वन देखना चाहते हैं। चारों सब्जेक्ट के लिए बाबा ने भिन्न भिन्न रीति से श्रीमत दी है। पहली सब्जेक्ट ज्ञान की, जिसकी गहराई में जाने वाली आत्माएं सिर्फ मुरली सुनती नहीं है लेकिन ज्ञान का अच्छा चिंतन करती हैं, मनन करती हैं और मनन चिंतन करते हुए उसका स्वरूप बन जाती हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का स्वरूप बनने वाली आत्माएं ज्ञानी तो आत्मा कहलाती है और ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है भगवानों आज। तो यदि बाबा के बच्चे ज्ञान की सब्जेक्ट में ज्ञानी तो आत्मा बन करके रहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा माना ज्ञान सुनाने वाले नहीं, ज्ञान वर्णन करने वाले नहीं, लेकिन ज्ञान जीवन में उतर आए हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति ज्ञान स्वरूप बन जाए, जो इन कर्मेंद्रियों से कर्म हो, करने के पहले, बोलने के पहले, सोचने के पहले सोच लिया जाए, तो सोच समझकर कर्म करने वाली आत्माएं जिनकी कथनी करनी और रहनी, जिनके मन के संकल्प बोल और कर्म तीनों समान बन जाते हैं वो ज्ञानी तो आत्माएं कहलाती हैं। जिनके अंदर ज्ञान का समान रहता है, ज्ञान सागर ने हम सबको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके दी हैं। दुनिया की ऐसी कोई भी नॉलेज नहीं है जो बाबा ने हम सबको अपनी मुरलियों के माध्यम से न पढ़ाया हो। इसलिए बाबा के हर बच्चे को हर सब्जेक्ट का ज्ञान है, भले उसने यूनिवर्सिटीज नहीं देखी हैं, कॉलेज नहीं देखे हैं, लेकिन पूरे विश्व के इतिहास, भूगोल, आत्माओं के ब्रह्मांड का ज्ञान, जो आज बाबा कह रहे थे कि मेरे बच्चे ये ज्ञान का एक एक रतन लाखों करोड़ों रुपए का है, इस पर आप सभी विचार करते होंगे कि ये तीन पेज की मुरली कितने रुपए की होगी, कितने करोड़ों के रतन उसके अंदर समाये हुए हैं, रत्नागर बाबा ने हम सब बच्चों को बनाया है। एक एक बच्चा अगर मुरली के ज्ञान रत्नों से खेलना जानता है, उसकी बुद्धि दिव्य बनती जाती है और उसके अंदर हर ज्ञान की पॉइंट बहुत स्पष्ट आती जाती हैं। इसलिए ज्ञानी तो आत्माएं संतुलन में रहना सीख जाती हैं और बाबा की श्रीमत यही कहती है कि बच्चे आपका ये जीवन जो है वो बहुत बैलेंस में रहना चाहिए। हमेशा आपने बाबा की ये श्रीमत सुनी होगी, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, आपका ये जीवन बीच का होना चाहिए। तो हम आपको चारों सब्जेक्ट के द्वारा जो हमें सत्य राह मिली है, जो हमें उसके लिए श्रेष्ठ मत मिली है, उस विषय में थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ज्ञान की सब्जेक्ट जो हमें बाबा ने ज्ञान के राज सुनाए हैं उससे हमारी जीवन बैलेंस युक्त बन गई है, संतुलन में रहना सीख गए। सादा जीवन उच्च विचार, ये बाबा की श्रीमत है। खर्चे कम से कम हो और कार्य अच्छे से अच्छा हो, कम खर्च बाला नसीन, ये साकार बाबा की टोटके हैं मुरली से। ये श्रीमत बाबा हम सबको देता है। ऐसे नहीं है पैसा है तो एकदम उसको शौक मौज में उड़ा दो, व्यर्थ नहीं जाए। एक एक पैसा ये भगवान की दी हुई अमानत है, इसको सफल करो। इसलिए जीवन के विचारों में ऊंचाइयां, चरित्र में ऊंचाइयां और प्रैक्टिकल लाइफ में सिंपलसिटी, जितना सिंपल उतना ब्यूटीफुल। और वो सिंपलसिटी निरहंकारिता पर आधारित है। आत्माएं निर्विकारी निरहंकारी बन जाएं, कितनी भी बड़ी पोस्ट पोजीशन मिल जाए, कितना मान और सम्मान मिले, लेकिन अहंकार का अंश भी न हो, जो हम सब ने ज्ञानित आत्माएं बाबा के बच्चों को देखा है, जो ज्ञानी हैं सच्चे, उनमें अहंकार का नाम निशान नहीं है। और बाबा हम सबको ये श्रीमत देता है कि बच्चे तुम जैसे ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सभी मनुष्य आत्माओं का पिता, हर धर्म पिताओं का भी पिता, ऐसा हमारा बाबा और कैसे निरहंकारी बन करके बच्चों के बीच में सेवाधारी बन करके रहा। श्रीमत देता है, बच्चे तुम किसी से सेवा मत लो, सेवा लोगे तो तुम्हारा भाग्य खत्म हो जाएगा। सुने हैं दो तीन दिन से मुरली, ये श्रीमत बाबा ने हम सबको दे करके ज्ञान स्वरूप बना दिया, ज्ञानी तू आत्मा बना दिया। तीन चार दिन पहले एक और बहुत सुंदर श्रीमत थी, क्योंकि बाबा के बच्चों को ज्ञानी योगी तू आत्मा बनना, ज्ञान के साथ साथ योग अभ्यास भी करना है, इसलिए बाबा ने एक बहुत सुंदर श्रीमत दी। बच्चे तुम्हें किसी से भी उधार लेने की जरूरत नहीं है। इसी हफ्ते की मुरलियों का सार मैं आपको सुना रहा हूं। अगर उधार लिया जाए, कर्ज ले लिया जाता है, तो कर्ज सबसे बड़ा मर्ज है। इसलिए बाबा की श्रीमत है, डायरेक्शन है ब्राह्मण आत्माओं के प्रति, सत्य राह है, झूठ नहीं बोलो, ठगी नहीं करो, चोरी नहीं करो, लेकिन साथ साथ किसी से कर्जा भी नहीं लो। जितनी बड़ी चादर है उतने पांव पसारो, जितने पैसे हैं, जितनी आमदनी है, जितनी कमाई है, उसी में अपने घर को चलाओ, उसका बजट बनाओ, ना अधिक खर्चे करो और ना एकदम बेघर बन करके रहो। भिखारी बन करके भी रहना नहीं है, ये भी हमारी शान नहीं है। लेकिन कर्जा लेकर के अपना सो दिखाना, शादी ब्याह कई कारोबार कई काम होते हैं और कई दिखावा करने के लिए उसके पीछे कर्ज ले लेते हैं और वो कर्ज उनके लिए बहुत बड़ा मर्ज बन जाता है। क्योंकि जो कर्जदार होता है उसको नींद नहीं आती है, उसको हमेशा लोग परेशान करते हैं कि कब तुम मेरा पैसा वापस करोगे, और अगर ब्याज पर ब्याज चढ़ता गया तो कर्ज के नीचे जीवन भर दबा रहता है। इसलिए बाबा की श्रीमत अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति कि बच्चे जितना है उतने में संतुष्ट रहना सीखो, वैसे जीवन ढाल लो, बाबा कमी नहीं आने देगा। लेकिन अधिक शौक मौज में कर्ज लेकर के सोबाजी नहीं करो। तो ज्ञानी तू आत्माओं के लिए ये सत्य राह बाबा ने दिखाई है। कई बाबा के बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा बिजनेस है, कार्य है ऐसा, ऑफिस में ऐसी नौकरी है, कभी कभी रिश्वत लेनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, क्या करूं? बाबा वहां श्रीमत क्या देता है? आपने बाबा की मुरलियों से नोट किया होगा, बाबा अपने हर बच्चे को सेफ साइड बताता है। कोई कहे मुझे करना ही पड़ता है तो बाबा कहेगा भले करो, लेकिन ऐसे नहीं है कि करके फिर फंस जाओ और फिर कहो बाबा ने तो कहा था भले करो। बहुत सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट। कहीं पर भी बाबा का, ब्रह्मा कुमारी का, यज्ञ का, इस ऊंचे ज्ञान का नाम बदनाम न हो, ऐसा कोई कर्म न हो जो कुल कलंकित बन जाए। लोग कहें ये तो ब्रह्मा कुमारी में जाता है फिर भी ऐसा करता है, बहुत ऊंची नजर है उन लोगों की। हम लोगों को मार्केट में अगर चले जाएं और कहीं पर भी कोई सामान लेने जाएं तो लोग ये भावताव नहीं करते, कहते आप ले जाओ, इतनी विश्वास रखते हैं, इतना एक समझते हैं सच्चे हैं ईमानदार हैं। इसलिए ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे कभी भी बेईमानी का कार्य, झूठ बोलने का कार्य, ठगी का कार्य नहीं कर सकते। इसलिए बाबा हम सबको ये श्रेष्ठ मत दे रहा है, इस सच्ची राह पर चलेंगे तो सेफ्टी है। ये ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी के लिए श्रेष्ठ मत है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करो जिसमें आपके ऊंचे चरित्र पर दाग लग जाए, जिससे ऊंचे ज्ञान पर लोग अंगुली उठाएं। यही इनको सिखाया जाता है क्या? हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, हमारी जीवन में सादगी हमारे ऊंचे ज्ञान और ज्ञानदाता को सिद्ध करती है। इसलिए श्रीमत हम सबको बाबा दे रहा है, इस राह पर चलो, ब्राह्मण जीवन की राह है। एक एक बच्चे को बाबा कह रहे हैं, बच्चे मेरे नाम पर मेरे दाढ़ी की लाज रखो। क्या लाज रखो? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा कर्म मर्यादा के विपरीत न हो, इसरी मत है। हर एक को ध्यान रखना है। हमारे बोल में भी अगर जोश होता है, बहुत नशा चढ़ जाता है, तो भी लगता है कि इसको उल्टा ज्ञान का नशा है। इसलिए यहां भी संतुलन की जरूरत है, जितना जोश उतना होश। जितना ऊंचा स्वमान है, सत्यता की अथॉरिटी है, सत्य ज्ञान है। बाबा ने हमको सत्य ज्ञान दिया है, आत्मा का, परमात्मा का, पुनर्जन्म का, कर्मों का, सृष्टि चक्र का, किस चीज का ज्ञान नहीं दिया है। एक एक बच्चे को सब ज्ञान दिया है, लेकिन ज्ञानदाता हम सबको कहता है, बच्चे ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी होते हुए भी नम्रचित्त बन करके रहो। सत्य हो तो सत्यता के साथ साथ सभ्यता कभी नहीं छोड़ो, बहुत मधुरता से व्यवहार करो, कोई से बहसबाजी नहीं करो, हमेशा बाबा ने हम सबको कहा है, कई बार कोई बड़े बड़े विद्वान शास्त्रवादी सामने होते हैं, वो कहते हमसे शास्त्रार्थ करो। बाबा कहते बच्चे तुमको शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं है, कभी भी किसी से वाद विवाद नहीं करो, कभी भी किसी से टकराव की स्थिति पैदा न हो, ध्यान रखो। सत्य ज्ञान को कभी भी सिद्ध नहीं किया जाता है, वो ऑटोमेटिक स्वतः सिद्ध हुआ पड़ा है। और सत्य ज्ञान है, उसका प्रमाण ये है हमारी प्रैक्टिकल जीवन। इसलिए सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सबको बाबा की श्रीमत मिली है, जितनी सत्यता है उतनी सभ्यता है, जितनी अथॉरिटी नशे की है उतनी नम्रता है, निरहंकारिता है। अगर हम सब बाबा की इस श्रीमत की राह पर चलते हैं, ये सत्य राह बाबा ने दिखाई है, इससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। बाप और बाबा के ऊंचे ज्ञान को हम प्रसिद्ध सिद्ध कर सकते हैं, अपने आप से धोने लगेगा। इसलिए इस वर्ष बाबा ने हम सबको कहा है कि बच्चे आपके चलन और चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष होगा, आपके ज्ञान सुनाने से नहीं होगा। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत दुनिया के अंदर हैं, आपसे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर देने वाले दुनिया में हैं, लेकिन आपका प्रभाव, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव तभी पड़ेगा जब आपके जीवन में रूहानियत होगी, आपके चलन और चेहरे में प्राप्तियां संपन्न जीवन होगी। तो ऐसा संतुलन, इसकी हमें श्रेष्ठ मत बाबा ने दी है। और एक एक मत पर बाबा कहता बच्चे चल के दिखाओ, तब कहेंगे तू मेरा बच्चा ज्ञानी, तू आत्मा है। इस सब्जेक्ट पर आप चिंतन करना। मेरे पास तो जब ये टॉपिक मुझे बहन ने सुनाई, हमने कहा मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है श्रीमत की, किस बात की श्रीमत बाबा ने नहीं दी है। हर बात की, हर कर्म की, हर व्यवहार की बाबा ने हम सबको श्रेष्ठ मत दी है। ऐसा कोई भी बाबा का बच्चा नहीं है जो कहे मुझे इस बात के विषय में पता ही नहीं है। अगर वो रोज की मुरली सुनता है तो मैं समझता हूँ आप कोई भी व्यवहार में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, मिलिट्री के अंदर काम करते हैं, कहीं बाहर नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसा भी आपका कार्य है, हर कार्य के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। और अगर उस श्रीमत के अनुसार हमारे कदम उठ रहे हैं तो हम सत्य मार्ग के राही कभी भटक नहीं सकते। ज्ञान का अर्थ है रोशनी, ज्ञान का अर्थ है प्रकाश। जिसके पास रोशनी है, प्रकाश है, टार्च है, उसको ठोकर नहीं लगती है, वो धोखे से बच जाता है, न धोखा देता है न धोखा खाता है। इसलिए श्रेष्ठ मत क्या क्या है जिस पर चलने से हम सब की सदगति होगी, उस श्रीमत को हम सब ध्यान पर रखें। फिर है दूसरी सब्जेक्ट योग की, बहुत गहरी सब्जेक्ट है और एक रिसर्च वाली सब्जेक्ट है। बाबा कई बार कहते हैं योग से तुम्हारी आयु बढ़ती है, योग से तुम्हारे आत्मा के विकर्म पाप कर्म दग्ध होते हैं, योग से तुम कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, योग एक चमत्कार है इस ब्राह्मण जीवन का। हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हमारे ग्राम विकास प्रभाग ने वहां के इस प्रभाग से जुड़े हुए किसान भाई बहनों ने अपने खेती पर, अपने पौधों पर, वृक्षों पर योग के प्रयोग किए हैं। जिस वृक्ष में 50 साल तक एक बार भी आम नहीं आया, केवल योग की दृष्टि देकर के, योग करने से, शिव बाबा का झंडा लगाने से मीठे आम आना शुरू हो गए। चमत्कार है योग, एक चमत्कार है। सिद्धि वो नहीं रिद्धि सिद्धि वाली, ये यथार्थ विधि है। और यदि हमारा योग विधि पूर्वक है, 100% उसकी सिद्धि निश्चित है, मिलनी ही है। कोई कह नहीं सकता है कि इसकी सिद्धि नहीं होगी। असंभव कार्य, असंभव शब्द हमारे इस ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं। हर कार्य संभव है। अगर कोई माताएं मुझे कहें कि भाई साहब मेरे आगे ये विघ्न है, मैं क्या करूं, बाबा उसको यही उत्तर देगा, यही दवाई देगा, बच्चे तुम बैठ करके उसको योग का दान दो, उसकी मनसा सेवा करो, किसी भी प्रकार का विघ्न हो, चाहे शारीरिक विघ्न हो, चाहे संबंधों में विघ्न हो, चाहे समाज के द्वारा विघ्न हो, चाहे सरकार के द्वारा विघ्न हो, और चाहे प्रकृति के द्वारा हो, हर विघ्न पर हम सभी बच्चे अगर यथार्थ विधि पूर्वक योग करेंगे तो आप सबने सुना होगा बाबा के महावाक्य कि जहां मेरे बच्चे योगी बच्चे होंगे वहां पर पानी की बाढ़ भी आने वाली होगी तो पानी वहीं रुक जाएगा, उनके पास नहीं आएगा। भूकंप के अंदर भी जहां योगी आत्माएं रही उनके सेवा केंद्र को जरा भी झटका नहीं लगा है। कुछ भी हुआ है उनके मकान ऐसे खड़े रहे हैं। हमने 2000 में जो भुज का भूकंप कच्छ भुज में आया था, भूकंप के तुरंत बाद उस इलाके का भ्रमण किया था, गए थे, जितने बाबा के केंद्र थे सब आजू बाजू के उनके मकान ध्वस्त, एक भी ईंट नहीं थे, सब नीचे थे, और बाबा का झंडा जिस मकान पर लगा हुआ था वो एकदम खड़ा हुआ था। क्या एनर्जी है, ये योग की एनर्जी है, कोई भगवान की वो चमत्कारिक एनर्जी नहीं है, लेकिन ये हमारे श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशन, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने वाली आत्माएं, प्रकृति की सेवा करने वाली आत्माएं प्रकृति से धोखा नहीं खा सकती, उनको धोखा नहीं मिल सकता, प्रकृति उनको तंग नहीं कर सकती, प्रकृति उनको साथ देती है, मदद करती है, और वर्तमान समय इसकी आवश्यकता है। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहा, बच्चे जितना हो सके योग करो, योग करो, योग करो। अमृत वेले ही नहीं बैठ गए, एक घंटा कर लिया, आधा घंटा कर लिया, और फिर सारा दिन ऐसे ही काम में बिजी हो गए। इस बार बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराई, बच्चे सोमान की माला घुमाओ, कर्म योगी बन करके दिखाओ, कर्म करते हुए करावन हार की स्मृति में रहो, कराने वाला करा रहा है, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा करा रही हूं, कर्म योगी बनकर रहो, निरंतर योगी बनकर रहो, कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बाबा ने हम सबको 24 बार ड्रिल करने के लिए कहा है, 12 बार अव्यक्त बनो, 12 बार निराकारी। किस लिए ड्रिल दी, कि निरंतर योगी बन जाएं, बीच में गैप न पड़े। अगर बार बार अभ्यास करते रहेंगे, एक मिनट भी करेंगे तो उसका प्रभाव चलेगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे योग के प्रयोग करना सीख जाएं, प्रयोग करो, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं है। बीमारी आई है, कुछ समय शांत होकर के, धैर्यवत होकर के, जैसे हमारे हार्ट के पेशेंट को योग का प्रयोग ही तो सिखा रहे हैं, आर्टरी खुल जाएंगे, खुल गई हैं, कैसे खुली हैं, बाबा से योग किया है, शांत में बैठे हैं, शक्तियां ली हैं और आर्टरी खुल गई हैं। विश्वास है, भावना भी है, बाबा की शक्ति भी है, कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन एक ऊर्जा है, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों में बहुत बड़ी ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के साथ अगर परमात्म ऊर्जा मिल जाए, भगवान की शक्ति मिल जाए, परमधाम की शक्ति मिल जाए, क्या होगा, 3 गुना ऊर्जा बढ़ जाएगी। एक एक बच्चे को पता है कि भगवान के घर की ऊर्जा कितनी होगी, जहां कोई पतित आत्मा प्रवेश ही नहीं होती है, उस परमधाम की ऊर्जा हमारे साथ है, क्योंकि हम बीच बीच में ड्रिल करते हैं वहां जाने की, वहां से शक्ति लेते हैं। बाबा हमको कहता, बच्चे तुम मुझे घर में याद करो, सामने बाबा बैठा फिर भी कहता घर में याद करो, क्यों कहता है, वहां बहुत ऊर्जा है, हर आत्मा वहां पावन है, वो पतित पावन का स्थायी निवास स्थान है, संगम पर तो टेम्परेरी टाइम के लिए ऊपर से आता और जाता है, लेकिन जो 5000 साल तक कंटिन्यू वहां एक स्थान पर रहता है पतित पावन परमात्मा, उस घर की ऊर्जा कितनी होगी। इसलिए बाबा हम सबको कहता है घर की शक्तियां, परमधाम की शक्तियां और परमात्मा की शक्तियां, उनको कैच करो, उनको अपने साथ ले लो, तो ये तीन गुना ऊर्जा कोई भी कार्य सिद्ध कर सकती है। फिर सकास दो, फिर वाइब्रेशन फैलाओ, तीन गुना शक्ति उसमें कार्य करेगी, क्या असंभव है। खेती कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप होगी। कोई भी कार्य आप करना चाहें योग की शक्तियों का प्रयोग करें। योग बहुत बड़ी शक्ति बाबा ने सिखाई है, लेकिन केवल यथार्थ योग हो, बुद्धि भटके नहीं। बाबा को याद किया, पता नहीं मेरी याद पहुंची या नहीं, याद तो करता हूं लेकिन ब्रह्मा बाबा को याद करूं या शिव बाबा को याद करूं, कहां याद करूं, कैसे याद करूं, कितने प्रश्न लेकर के बैठ जाते हैं। बाबा कहता बच्चे, मेरी श्रीमत पर चलने वाले बच्चे कभी उलझन में नहीं आते, कभी मूंझते नहीं, भारी नहीं होते, कभी कंप्लेन नहीं करते, कभी डिस्टर्ब नहीं होते। योग क्या है, यथार्थ योग क्या है, हर मुरली में बाबा सुनाता है, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो। अब यथार्थ योग बाबा रोज सुना रहा है, फिर भी पूछते योग क्या है। इसलिए हम सब जितना इस देह से डिटैच होकर के विदेही स्थिति में स्थित होकर के अपने भ्रकुटी आसन पर बैठते हैं, अकाल तख्त पर बैठते हैं, ज्योति स्वरूप में स्थित होते हैं, अपने आप को निश्चय करते हैं कि मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा समझते ही डबल लाइट स्थिति बन जाती है, एक हल्कापन आ जाता है और दूसरा प्रकाश स्वरूप स्थिति बन जाती है। तो लाइट बनने से, लाइट स्वरूप स्थिति में आने से, लाइट चीज कहां जाती है, ऊपर जाती है, हमेशा ऊपर जाती है, हमारे विचार ऊपर चले जाते हैं बाबा के पास, और फिर बाबा की जो शक्तियां मिलती हैं वो रिलेशन के आधार से कनेक्शन होने के कारण हमें सर्व शक्तियों की अनुभूति होती है। सिर्फ कनेक्शन अगर हमने जोड़ा, उसमें रिलेशन नहीं है, तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन नहीं बन सकती, और जहां संपन्नता नहीं है वहां संतुष्टता नहीं होती। कोई कितना भी कहे मैं तो संतुष्ट हूं, लेकिन संतुष्ट बाबा उसको ही कहता है जो भरपूर हो, संपन्न हो, तृप्त हो। इच्छाएं हैं और कहे मैं संतुष्ट हूं, इसलिए योगी तो आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या बनती जाती हैं, इच्छाओं की कोई विद्या नहीं रहती। संपन्न बनने की इच्छा है, श्रेष्ठ कर्मातीत बनने की इच्छा है, पास विद आनर होने की इच्छा है, उसके लिए रेस है, पुरुषार्थ है, वो इच्छाएं नहीं खत्म की हैं, लेकिन जो हदों की चाहनाएं हैं, मेरा मान हो, मेरा शान हो, मैं इसमें आगे बढ़ूं, मेरे को लोग पूछे, मेरा फोटो छप जाए, कितनी सारी इच्छाएं लेकर के घूमते हैं। हद की इच्छाओं से योगी तो आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती हैं, और इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति संपन्नता का प्रतीक है। तो हम सब बाबा के बच्चों को योग की सब्जेक्ट के लिए बहुत सी श्रीमत मिली हुई हैं, और उसके आधार से हम जैसे ज्ञान से संतुलन बना लिया, ऐसे योग से तृप्त संतुष्ट आत्मा बन गए। तो संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न रहती है, भरपूर रहती है, और जो प्रसन्न और भरपूर रहती है वो तृप्त रहती है, दूसरों को प्रसन्न कर देती है। योग की दृष्टि से, योगी आत्मा की दृष्टि से अनेक आत्माओं के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रश्न लेकर के आता है, बहुत प्रश्नों की उलझन है, बाबा के सामने आते उसके सब प्रश्न हल हो जाते हैं, प्रश्न पूछना ही भूल जाता है। कई बार बाबा के सामने क्या, हम बड़ों के सामने भी जाते हैं, बहुत से बातें लेकर जाते हैं, ये बात करेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ते ही सब प्रश्न समाधान हो जाते, समाप्त हो जाते। प्रसन्न चित आत्माएं हैं तो उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति है कि हमें प्रसन्न चित कर देती है, प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। इसलिए योग की शक्तियों के लिए बाबा की श्रीमत मिली हुई है कि बच्चे योग यथार्थ हो, योग युक्ति युक्त हो, योगी तो आत्माएं आपकी जीवन हो। योगी जीवन है, योग लगाने वाले सिर्फ नहीं है, और जीवन माना जो सदा काल हो। एक घंटा योग किया, दो घंटा योग किया, छह घंटा योग किया, बाबा कहते क्या गिनती करते हो, बाकी किसको याद करते हो? चार घंटा मुझे याद करते हो, बीस घंटा दूसरों को याद करते हो क्या? इसलिए निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, कर्म करते भी बाबा के सिवाय मेरा है कौन? तो ये श्रीमत बाबा की हम सबको योग के लिए मिली है कि बच्चे एक बाबा दूसरा न कोई, एक वृत्ता बन करके रहो, एक मत पर चलो, एक की राय पर चलो, आपकी जीवन योगी बन जाएगी। तीसरी सब्जेक्ट धारणाओं की है और वो हमारे देवी देवता धर्म की स्थापना का फाउंडेशन है। इसलिए बाबा कहता बच्चे धारणाओं के लिए कहा जाता है धर्म, धारणाएं हमारा धर्म है, और धर्म के लिए मान्यता है कि प्राण जाए पर धर्म न छूटे। हम जितनी धारणाओं का संकल्प करते हैं, ब्राह्मण जीवन की ऊंची धारणाएं, हम किसी भी विकारी के हाथ का नहीं खाएंगे। हमारी ऊंची धारणा है हम शुद्ध शाकाहारी होकर के रहेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, श्रेष्ठ संग में रहेंगे। ये सब श्रीमत मिली हुई है, लिस्ट निकालना। हमारी ऊंची धारणाओं के लिए बाबा ने बहुत सारी श्रीमत दी हैं, और अगर वो श्रीमत जितने जितनी परसेंट में पालन किया है वो सत्य पथ का राही है। हम सबको श्रेष्ठ धारणाएं हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना रही हैं, हमारे चरित्र को ऊंचा कर रही हैं। इसलिए कोई कभी कंप्लेंट नहीं करना, क्या करूं, खाना पड़ता है, क्या करूं, ये करना पड़ता है। बाबा कहते ये सब तुम्हारी बहानेबाजी है, ऐसी बहानेबाजी के संकल्प मत करो। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है, जहां निश्चय है वहां विजय है, जहां हिम्मत है वहां बाबा की मदद है, जहां लगन है वहां विघ्न ठहरते नहीं है। लगन की कमी होगी इसलिए बार बार विघ्न आते हैं, चेक करो। लगन की अग्नि को तेज कर दो, विघ्न खत्म हो जाएंगे। धारणाओं में कोई विघ्न डाल दे वो ही नहीं सकता है। मीरा की धारणाएं कोई तोड़ सका क्या? कितने भी पेपर आए, कितनी भी परीक्षाएं आई, संकल्प ले लिया कि मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, कुछ भी हो जाए, आखिर वो विजयी बनी। आज उसकी इतनी मान्यता, इतना गायन हम सभी करते हैं, भक्त मीरा शिरोमणि। इसलिए कभी भी विघ्न है, क्या करूं, कैसे करूं, इन प्रश्नों में उलझो मत। योग को यथार्थ करो, धारणाएं अच्छे से अच्छी बनाने का दृढ़ता से संकल्प कर लो, सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। ये श्रेष्ठ मत मिली हुई है धारणाओं के लिए। कुछ भी हो जाए, संकल्प लिया है, कहां जाएंगे? श्वास जाएगी ना, भले चली जाए, मैं अपने व्रत से पीछे नहीं हटूंगा। व्रत अगर रखती हैं माताएं, रखती हैं अगर व्रत 21 दिन का, कोई निर्जल व्रत लेती हैं, पानी भी नहीं पिएंगी, कहेंगी संकल्प भी नहीं आ जाए पीने का, खाने का। भक्ति में इतना किया और ज्ञान में क्या एक व्रत नहीं ले सकते? क्या व्रत बाबा ने दिया? पवित्र बनना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, श्रेष्ठ संग में रहना, यही व्रत दिए, यही श्रीमत दिए। अगर हम व्रत ले लें हमारी वृत्तियां चेंज हो जाएंगी, संस्कार नहीं बदलते हैं, क्या करूं कैसे करूं, बड़े संस्कार प्रबल हैं, बड़े संस्कार कड़े हैं, बार बार तूफान आते हैं। बाबा के तक कहते रहो, कंप्लेन करते रहो, कभी नहीं खत्म होंगे अगर कंप्लेन करोगे। व्रत लो, प्रतिज्ञा करो, संकल्प दृढ़ करो, आपके सब वृत्तियां चेंज हो जाएंगी, संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। जिसकी धारणाएं किसी भी बात में कमजोर हैं, व्रत लेकर के देखो, पेपर आएगा, पार हो जाएगा। रिवाइज करो व्रत को कि हमने बाबा के सामने बाबा के घर में ये व्रत लिया है। कुछ भी हो जाए हमारी वृत्ति चंचल नहीं होगी, हमारी दृष्टि कभी विकारी नहीं होगी, हमारी स्मृति में एक बाबा के सिवाय कोई देहधारी नहीं आएगा। व्रत लो, श्रीमत है। और अगर किसी ने ये व्रत ले लिया, उसकी वृत्तियां एकदम संस्कार शीतल, काया शीतल, पवित्र, योगी, चेहरे और चलन पर रूहानियत, दिव्यता, अलौकिकता, प्रसन्नता अपने आप आ जाएगी। ये श्रेष्ठ मत है धारणाओं के लिए। और चौथी सब्जेक्ट बहुत सुंदर बाबा ने हम सब ब्राह्मणों को दी है, समय पास करने की भी है, भाग्य बनाने की भी है, सेवा। लेकिन सेवा माना सुख देना और सुख लेना। सेवा उसको कहा जाता है जिसमें सुख की लेन देन हो, जिसमें आत्मा खुद सुखी हो, दूसरों को सुख मिले। अगर कोई सेवा करने जाए और डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब कर दे, तो सेवा कही जाएगी क्या? इसलिए सेवाधारी वही है जो कभी भी डिस्टर्ब न करे न हो, सुख देता चले, सुख लेता चले, कभी हदों के बंधन में न बंध जाए, कभी स्वार्थ के कारण सेवा न करे। ये हमारे लिए बाबा की श्रीमत है। बच्चे कभी भी स्वार्थ के कारण नहीं करना, मेरा मान होगा, मेरी महिमा होगी, मेरा नाम आएगा, मैं टीवी पर आ जाऊंगा, इसके लिए सेवा कर रहे हैं क्या? कई लोग सेवा करने जाते हैं, अपने को शो कर देते, अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, समझते हैं हमने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, हमने बहुत अच्छा कार्य किया, हम तो रूहानी सेवा कर रहे हैं, नाम अपना कर रहे हैं और काम बाबा का हो रहा है। होता है कैसे? इसलिए बाबा कहता, बच्चे जहां बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा है, वहां अपने को गुप्त करो। कई लोग अपना नाम करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम बहनों से करवाते हैं, बहनों को बुलाएंगे, मंच देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वहां एक जगह पर ब्रह्मा कुमारी का नाम ही नहीं होगा। जैसे बाबा को प्रत्यक्ष करना ही नहीं चाहते, अपने को प्रत्यक्ष करना चाहते, ये सेवा नहीं है। हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा पर हैं। सब सेवाधारियों को ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ हम कर रहे हैं, चाहे किसी विंग से संबंधित हम कार्य कर रहे हैं, चाहे कुछ सेवा का कोई भी कार्य है, वो सब सेवाएं एक को प्रत्यक्ष करने के लिए हैं। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए सेवा नहीं है। हम सब सेवाधारी सेवा करें और सेवा करके सेवा के अभिमान से मुक्त हो जाएं। कर्तापन का नशा ना आ जाए कि मैं बहुत अच्छा करता हूं। इसलिए सेवाधारी को बहुत निर्माण चित, नम्र चित बन करके रहना है। और सेवा सच्ची वही है जहां पर कोई भी प्रकार का पर्सनल स्वार्थ न हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ बाबा ने दिया है, न किसी से पैसा चाहिए, न किसी से मान चाहिए, न शान चाहिए। जो है अगर कोई करता है, सफल करे, बाबा के यज्ञ में करे, बाबा के लिए करे, मुझे क्या चाहिए? मुझे बाबा दो रोटी खिलाएगा, आराम से रखा है। इतनी निस्वार्थ भाव की सेवा अगर होगी, उसमें कोई हदे नहीं है, मेरी एरिया, ये तेरी एरिया, ये मेरा जोन, ये तेरा जोन, कोई हदे नहीं है। ऐसे बेहद दृष्टिकोण से अपना समझ करके बाबा के ज्ञान को, ज्ञानदाता को, उसके द्वारा पढ़ाई को अगर हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो हम सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। इसलिए बाबा कहता है, तुम मेरे बच्चे केवल केवल ईश्वरीय सेवा के लिए हो। ब्राह्मण माना जिनका स्वधर्म, जिनका धर्म ही सेवा है। तो हम सब की श्वास भी सेवा है, धर्म भी सेवा है, और सेवा करके हम दुआओं का खाता जमा करते चले। तो चारों सब्जेक्ट के लिए जो बाबा ने श्रीमत दी है, हर एक ब्राह्मण आत्मा सुबह से शाम तक इन चारों सब्जेक्ट के आधार से बाबा की एक एक श्रीमत पर चलता चले, तो सत्य पथ का राही विजयी बन जाएगा, विजय माला का मणका बन जाएगा। ओम शांति।